मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 27 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं निर्भव प्रताप सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, जोंधले नितेश नांदेड़ महाराष्ट्र से, विकास तिवारी शहडोल मध्य प्रदेश से और शुभम अहलाजी पवार औरंगाबाद महाराष्ट्र से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं इस इशू पर बात करना चाहूंगा कि प्री एग्जामिनेशन में आप अपने पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी टेक्निक के बारे में जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। इनफैक्ट सच पूछिए तो न्यूज पर आधारित कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन अब बड़ी खबरों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि जैसे ही नई सरकार का गठन होगा और वो अपने कामकाज की शुरुआत करेगी तो स्वाभाविक तौर पर न्यूज का जो सिलसिला है, समाचारों का सिलसिला है, वो शुरू हो जाएगा। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो सिविल सर्विस की जो पिछले समय से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए एक यह अच्छी बात है। इस मायने में कि देखिए, अब जब हम योजनाओं की बात करते हैं, है ना, हेल्थ सेक्टर में क्या योजनाएं चल रही हैं, कृषि की क्या नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या आ रही हैं, इकोनॉमी में तो आप देखते हैं ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड की अनेक तरह की योजनाएं हैं, एनर्जी की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। स्वाभाविक तौर पर अब चूंकि सरकार वही है तो ये योजनाएं कंटिन्यू करेंगी, इन योजनाओं में जो कमियां होंगी उन्हें और दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। सामान्यतया होता तो यही है कि यदि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है तो वो अपने ढंग से नीतियां बनाएगी, और यही लोकतंत्र भी है, तो जो पुरानी नीतियां हैं उनमें या तो बंद कर दिया जाएगा, नाम बदल दिया जाएगा, उनमें सुधार कर दिया जाएगा, तो एक हॉचपॉच की स्थिति आ जाती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले 1-2 साल से गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए यह एक सुखद खबर है कि वही नीतियां कमोवेश थोड़े बहुत बदलाव के साथ कंटिन्यू करेंगे। जैसे आज के ही अखबार में है कि जो सरकार है वो स्टार्टअप्स की पॉलिसी को और ज्यादा व्यवहारिक बनाने की सोच रही है, मतलब एक न्यूज है। तो अब स्टार्टअप इस सरकार ने शुरू किया है, अब उसमें थोड़ा से और बदलाव आ जाएंगे, तो पहले जो आपने तैयारी की है इस रूप में वो तैयारी बेकार नहीं जाएगी, तो एक अच्छी बात है। दोस्तों, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है, उसको आधार बना करके मैं कुछ बातें आपसे फेडरल गवर्नमेंट के बारे में करना चाहूंगा। और ये जो मैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं, सरकार के तरीके से भी नहीं, बल्कि जनता के तरीके से, कि जनता भी कैसे अब ये जो संघात्मक स्वरूप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी पॉलिटी का, उसे समझने लगी है। उसकी समझ को आप कैसे समझेंगे, उसकी समझ को देखिए आप सीधे इस रूप में समझते हैं, एक सरकार केंद्र में है, एक पार्टी की सरकार, और अलग अलग पार्टियों की सरकारें अलग अलग राज्यों में हैं। तो अब आप देखिए कि जब वो एक ही साथ केंद्र के लिए भी वोटिंग कर रही है और राज्यों के लिए भी वोटिंग कर रही है एक ही साथ, लेकिन दोनों के वोटिंग में कितना फर्क आ गया है, मतलब यानी कि जनता बहुत अच्छे से इस बात को समझने लगी है कि नहीं, केंद्र सरकार एक अलग सरकार है और राज्य सरकार अलग सरकार है। ये बात अलग है कि जनता का जो संपर्क होता है वो सही मायने में तो राज्य सरकारों से ही होता है, लेकिन केंद्र सरकार अपने आप में कम अहमियत नहीं रखती, सर्वोच्च तो वही है। तो अभी जब आप अभी हुए चुनाव का जब विश्लेषण करेंगे तो आपको क्या यह आश्चर्य नहीं लगता कि कुछ समय पहले ही, 4 महीने पहले ही, 6 महीने पहले की बात होगी, मध्य प्रदेश में उसने कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को हरा करके सरकार बनी, राजस्थान में भी यही किया, छत्तीसगढ़ में भी उसने यही किया, मतलब इन तीनों राज्यों में उसने पिछली सरकारों को पराजित करके और नई सरकार वो लेकर के आई कांग्रेस। ठीक है, कुछ ही महीनों बाद जब केंद्र के लिए चुनाव हो रहे हैं तो आप देखिए कि कैसे वो केंद्र के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। अदरवाइज सामान्य तौर पर हम सोचे, जो जनरली विश्लेषण में भी आ रहा था वो यही था कि नहीं, यहां से तो कांग्रेस कम से कम कुछ सीटें तो लेगी, और उसका सफाया कर दिया केंद्र के चुनाव में। ये जनता की ही समझ है, फिर आप कुछ दूसरे राज्यों की देखिए तो आपको एक अलग तरह के परिदृश्य दिखाई देंगे। सिक्किम में बकायदे सत्ता में परिवर्तन हो गया, आंध्र प्रदेश में आप देखिए सत्ता में परिवर्तन हो गया है, तेलुगु देशम पार्टी अब नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह यही हुआ है। जब आप ओडिशा को देखते हैं तो ओडिशा में नवीन पटनायक जी पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वास्तव में जनता के हित में काम किया जाए तो बाकायदे जनता उसे स्वीकार भी करती है। और बिहार को देख लीजिए, बिहार में इतने साल से सरकार चल रही है और अभी जो चुनाव हुए थे बिहार में कुछ समय पहले विधानसभा के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी सरकार है और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अभी जब केंद्र के चुनाव हुए तो उन्होंने केंद्र में भी इसी पार्टी के गठबंधन को इतना जबरदस्त जीत दिलाई। इससे सिद्ध होता है कि कैसे भारत की जनता के दिमाग में भी अब हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। तो ये जो समझ है दोस्तों, ये आपके पॉलिटी की समझ के लिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की समझ की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटी की समझ के लिए आपके आपको बहुत ज्यादा मदद पहुंचाएगी। एक डेटा आप दिमाग में रखिए जो पिछले 5 सालों तक आपके काम आएगी, वो ये कि ये पहली बार हुआ है जबकि भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा हुई है 76 महिलाएं सांसद के रूप में हमारे संसद में पहुंची, संसद में भी नहीं बल्कि कहना चाहिए लोकसभा में, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, लोकसभा में पहुंची है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महिलाओं के लिए आप देखिए 33% आरक्षण की मांग की जा रही है। इसके लिए पार्टियों में बातचीत भी हुई है, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन इस तरीके से ही सही। कहीं ना कहीं हम जब संसद में महिलाओं की स्थिति को ज्यादा बेहतर पाते हैं तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं, यह जो दिशा है ये वीमेन एम्पावरमेंट की ओर बढ़ते हुए कदम है। तो इस डेटा का आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, ये है कि भारत को किस तरीके से रूस और अमेरिका इन दोनों के बीच अपने संबंधों को संतुलित करने की एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर दिलीप चौबे का है ये, आप सामान्य तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए आप स्पष्ट करेगा आपकी दृष्टि को। चिदंबरम साहब का आपको एक लेख प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, पी चिदंबरम जो हमारे वित्त मंत्री रहे और बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं और बहुत ही एकेडमिक किस्म के लीडर हैं, इसे आप पढ़िएगा, सामान्य तरीके से ही पढ़िएगा, कुछ स्पेसिफिक तरीके से नहीं, तो आपको ढेर सारी चीजें इससे स्पष्ट होंगी। और फिर न्यूज़पेपर्स की जो दूसरी क्लिपिंग्स हैं वो तो आपको दी ही जा रही हैं। दोस्तों, अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं और वह है प्री के पेपर्स आप कैसे हल करेंगे। मुझे मालूम है कि आप सबके पास हल करने के अपने अपने तरीके होंगे और हो सकता है कि जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो पहले से मालूम भी हो, लेकिन मैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें शायद मालूम न हो या जो पहली बार प्री एग्जाम में अपीयर हो रहे हों या जिन्हें मालूम भी होगा तो शायद मेरे बताने के बाद उन्हें उस पैटर्न पर ज्यादा विश्वास हो जाएगा तो इसे यूज में करने लगेंगे। तो ये सोच करके मैं ये आपको तरीका बताने जा रहा हूं और अगले अब जो आने वाला जो रविवार है उस दिन आपके एग्जाम है ही, तो मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट टाइम है कि मुझे इसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपके सामने चुनौती होगी दोस्तों, कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा याद रखिए कि आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, उसे नहीं खोना है। मान लीजिए कि शुरू में आप 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न पढ़ रहे हैं और पता लगा कि ये चारों बड़े कठिन हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और शुरुआत हो गई है उसके साइंस के क्वेश्चन से, तो आप घबरा जाएंगे। और जैसे ही आप घबराए तो आप ये मान करके चलिए कि आपने अपने हार की तैयारी कर ली है। नो, पेपर कठिन है तो आपके लिए कठिन नहीं है, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो सबके लिए कठिन है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, जितना कठिन होता है होने दीजिए, जो कट ऑफ परसेंटेज होगा वो नीचे चले जाएंगे उस, लेकिन आपको जो कट ऑफ परसेंटेज जो सिलेक्शन वाला है उसमें शामिल होना है। घबराइए मत, अभी तो 100 क्वेश्चंस की आपको यात्रा करनी है। जैसे ही पेपर मिलता है पूरी मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए आप सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और उसे सॉल्व करते चले जाइए। बीच बीच में पलट करके प्रश्न पत्र को देखने का मोह छोड़िए, आप एक एक प्रश्न पढ़ते चले जाइए और सॉल्व करते चले जाइए। अब मैं आपको स्पेशली 3 स्टेजेस बताना चाहूंगा। आप फर्स्ट स्टेज ये है कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो उसमें दिमाग लगाइए मत, जो आपका क्वेश्चन नंबर होता है वहां पेंसिल से हल्का सा निशान लगा दीजिए। निशान लगाने का मतलब है कि मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, ऐसा इसलिए कि सेकेंड राउंड में जब आप देखेंगे तो आपको छांटना न पड़े पढ़ पढ़ करके, समय की चुनौती है, आप बस उसको देखें बिंदी को, हाँ ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, और इसके बाद उसको आप सीधे सॉल्व करने पर आ जाए सेकेंड स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में आप उन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाइए जो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, बस। अब सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड में अब जिन पर आपने निशान लगा लिया है उन्हें देखें। अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनके दो विकल्पों पर आपको संदेह है, वहां अब आप थोड़ा सा वक्त लगाइए, थोड़ा सा टाइम लगाइए, अब अपेक्षाकृत ज्यादा समय आपको देना होगा, और उसमें से सोचिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई भी नहीं बन रहा है, दोनों सही लग रहे हैं, तब भी एक पर निशान लगाइए, छोड़िए मत, दो विकल्पों वाले में से एक पर फिर आप निशान लगा ही दीजिए। संभाव्यता की जो थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके तहत आप लाभ में रहेंगे, राइट। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो निशान आपने लगाया था उसे मिटा दीजिए, यानी कि अब आप ये सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका तीसरा और आखिरी राउंड होगा। अब तीसरा और आखिरी राउंड में देखिए कि कौन से क्वेश्चन बचे हैं जिनके दो से अधिक यानी कि तीन या चारों विकल्प पर संदेह है। अब आपको करना केवल यह है कि आप सही उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि समय का दबाव भी आपके दिमाग पर रहेगा। तो अब आप जो तीन विकल्प हैं, एक विकल्प तो आप आउटराइट रिजेक्ट कर ले रहे हैं, जो तीन विकल्प बच गए हैं इनमें से कोशिश कीजिए कि एक और विकल्प को आप निकाल दें कि नहीं यार ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो बच जाएंगे तो इन दो में से किसी एक पर आप निशान लगा दीजिए, इसमें से अब निकालने की कोशिश मत कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां भी आप दो विकल्पों में से एक पर निशान लगा रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा। अब छोड़ दीजिए आप, जो प्रश्न जटिल हैं, तीन से अधिक विकल्प वाले हैं, मेरी सलाह है कि आप उन्हें हल न करें। हालांकि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से आप कह सकते हैं कि सर तीन विकल्प से में भी अगर हम एक में निशान लगा देते हैं तब भी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आपका गलत होता है तो 0.3 मार्क्स कटते हैं और जब सही होता है तो पूरे नंबर मिलते हैं, तो 0.3 मार्क्स मतलब 0.3%। तो तीन, अगर आपने टोटल चार क्वेश्चन किए और उसमें से एक सही किया और तीन गलत कर दिए, तो आप बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा काम करना क्यों, आप इसमें जो समय खराब करेंगे, बेहतर है कि उस समय का उपयोग आप उसके लिए करें जो आप तीन में से एक विकल्प निकालना चाह रहे हैं। इस समय का उपयोग वहां करेंगे तो वहां ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए तीन या तीन से अधिक जो विकल्प वाले हैं, मेरी सलाह होगी कि आप उन्हें छोड़ दीजिए और आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल से निकलिए, बिना यह सोचे कि पेपर अच्छा बना है या खराब बना है, और क्योंकि आपको अभी जीएस सेकेंड पेपर भी देना है। तो मित्रों, हल करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ तरीका बताया है जो बहुत ही मतलब लाभदायक होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम से पहले भी आप इसे ट्राई करके देखेंगे तो शायद अपने लिए ज्यादा उपयोगी पाएंगे, राइट। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं महमूद शाह, राहुल सिंह राठौर, शिवम कुमार और प्रतीक सिंह थाणे महाराष्ट्र से। और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।